श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेतासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततम् विश्वमनंतरूप। ये अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वे ही परम आश्रय हैं। निधानम का अर्थ है ब्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। वे संसार में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को जानने वाले हैं। यदि ज्ञान का कोई अंत है तो वे ही समस्त ज्ञान के अंत हैं। अतः वे ज्ञाता हैं और ज्ञेयम् वेद्यम भी। वे जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं और वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। शायद कुछ कठिनाई हो रही होगी समझने में, तो हम लोग चर्चा करेंगे एक एक शब्द पे। आदि देव मतलब भगवान का कोई शुरुआत नहीं है। इस जगत में कोई भी देवता है वो ब्रह्मा जी के बाद ही उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु से हुई है, लेकिन भगवान विष्णु या कृष्ण इनकी उत्पत्ति किसी से नहीं हुई है। तो इसलिए इस शब्द का अर्थ है आदिदेव। और सनातन पुरुष का अर्थ ये है कि भले ही भगवान के आदि नहीं है लेकिन साथ साथ उनका अंत भी नहीं है, यानी अनादि काल से भगवान भगवान हैं और अनंत काल तक भगवान भगवान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का मतामत, कुछ लोगों का वोट लेकर भगवान कृष्ण भगवान घोषित किए गए हैं, वो ऐसा नहीं है। और साथ साथ पुरुष हैं मतलब वो एक व्यक्ति हैं, वो कोई कंसेप्ट मात्र नहीं है या कोई पुंज मात्र नहीं है, ज्योतिर्पुंज टाइप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली गई है, दृश्य जगत के परम आश्रय। परम आश्रय का अर्थ क्या है? अर्थात भगवान पूरी तरह से स्वराट हैं, उन्हें किसी का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। इस जगत में हम किसी को भी देखते हैं उसको आश्रय की आवश्यकता होती है, और अद्भुत बात यह है कि जगत में आश्रय मिलता भी है सबको, लेकिन भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति कोई बिल्डिंग बनाता है तो उसको आवश्यकता होती है ईंट की, मट्टी, बालू की, सीमेंट की, मिस्त्री इत्यादि की, अन्यथा वो स्वयं से नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है अपने देह से उत्पन्न कर देगा सब कुछ। लेकिन जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो अपनी इच्छा मात्र से इस पूरी जगत की सृष्टि कर देते हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि पूरा जगत भगवान पे ही आश्रित है। अब आप यहाँ देखेंगे शब्द आ रहा है, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। वस्तुतः अगर इस जगत में हम किसी वस्तु का संबंध भगवान से नहीं देख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा मोह है, बहुत बड़ा माया है। भगवान उपादान कारण के रूप में इस जगत में व्याप्त हैं, अर्थात जो भी वस्तु है वो भगवान की शक्ति से ही आई है। जैसे भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में बताया था, भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकारम इतिमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो इस कारण से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा पूरे विश्व में व्याप्त हैं, जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, भौतिक जगत है, उस सब जगह भगवान व्याप्त हैं अपनी शक्ति के द्वारा। तो यानी कि अगर कोई वस्तु देखे व्यक्ति और उसका संबंध भगवान से नहीं देख रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो भगवान को नहीं जानता है। और वेद्य मतलब भगवान को नहीं जाना तो जगत में कुछ भी नहीं जाना। एक बार श्रील प्रभुपाद से एक उनके शिष्य ने पूछा, क्या आध्यात्मिक गुरु सब कुछ जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ सब जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि पूछा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है अमरीका की, उसमें कितनी खिड़कियां हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी का उत्तर बहुत सुंदर था। उन्होंने बोला कि एक मिराज, मृग मरीचिका, कभी कभी रोड के पास में आपको पानी दिखाई पड़ता है सामने, स्पेशली गर्मी के समय में, लेकिन पानी होता नहीं है। तो ये प्रश्न करना कि इस मृग मरीचिका में या मिराज में कितना पानी है, इस प्रश्न का क्या महत्व है। तो आप देख सकते हैं कि इस जगत में लोग भौतिक प्रकृति की वस्तुओं का ही दोहन करने में, उसमें रिसर्च करने में लगे हुए हैं और ये नहीं सोचते हैं कि वस्तुएं आई कहाँ से हैं, किसने बनाया है, क्या कौन इसका स्रोत है। तो इसलिए जब व्यक्ति समझ लेता है कि भगवान कृष्ण ही इसके स्रोत हैं, तो वाकई जानकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह इन वस्तुओं को अपने भोग के उपयोग में नहीं लाता, उन वस्तुओं को भगवान को समर्पित कर देता है और साथ साथ किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से वो घृणा करना छोड़ देता है। यस्मिन विज्ञाते इतम सर्वम एवं विज्ञातम भवति, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझ लेता है वो सभी चीज का समझता है, अर्थात सभी का संबंध भगवान से समझ पाता है। साथ ही साथ भगवान सभी चीजें ज्ञाता है, भगवान इसको पहले भी बताया था कि जितना भी कुछ हो चुका है पहले वो सब जानते हैं, अभी जो हो रहा है वो सब जानते हैं और जो भविष्य काल में होने वाला है वो भी जानते हैं। हर जीव अनादिकाल से क्या इच्छा किया था, क्या कर रहा है और अनंत काल तक क्या इच्छा करेगा, सब भगवान जानते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान की शक्ति कितनी अद्भुत है, इस श्लोक से हम समझ पा रहे हैं। और इसमें शाह शब्द आ रहा है दिव्य, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भौतिक जगत के आश्रय हैं तो हो सकता है कि उनका शरीर भी भौतिक हो, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, समझा रहे हैं कि वैकुंठ जगत के भी भगवान कारण स्वरूप है और वैकुंठ जगत पूरी तरह से स्पिरिचुअल चिन्मय है। इस कारण से भगवान की दिव्यता को हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण जैसे वो आध्यात्मिक जगत के भी कारण है, इस कारण से हम समझ सकते हैं कि वो पूरी तरह से सच्चिदानंदमय है, ये समझ लेना चाहिए। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं प्रभुपाद कि दिव्य लोक में भी वो प्रधान पुरुष हैं, अर्थात आध्यात्मिक जगत में भी सब लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां जाकर भगवान बन जाएंगे। मुक्तावस्था में भी जीव कभी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकता है। हरे कृष्णा।